नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। अमेरिका के टैरिफ की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा का लाइसेंस मिला, स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा भी तैयार। म्यांमार में प्रधानमंत्री यू न्यू साव के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की घोषणा। रूस का कीव पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला, 16 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। और भारत ने एथेंस में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाए जाने की अमेरिका की हाल की घोषणा के प्रभावों का आकलन कर रही है। लोकसभा में कल श्री गोयल ने कहा कि देश राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। सरकार हमारे किसानों, श्रमिकों, एंटरप्रेन्योर्स, निर्यातकों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और उद्योग जगत के सभी हितधारकों के कल्याण की रक्षा और संवर्धन को सर्वोच्च महत्व देती है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और आपसी रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के कई प्रमुख व्यापार साझेदारों पर आयात शुल्क बढ़ाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमरीकी प्रशासन का कहना है कि नए शुल्क का उद्देश्य व्यापार घाटे को कम करना है, क्योंकि इससे अमरीकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचता है। नई नीति के अंतर्गत 68 देशों और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ को 10% शुल्क देना होगा। अमरीका के साथ व्यापार घाटे वाले 40 देशों को न्यूनतम 15% शुल्क का भुगतान करना होगा। नई नीति से कुछ देशों को बहुत अधिक शुल्क का सामना करना पड़ेगा, विशेषकर उन देशों को जिनका घाटा बहुत ज्यादा है या जिन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार शर्तों पर फिर से बातचीत नहीं की है। अमेरिका ने मेक्सिको को 30% आयात शुल्क से बचने पर विचार के लिए 90 दिन का समय दिया है। मेक्सिको से गैर ऑटोमोबाइल और गैर धातु वस्तुओं के आयात पर 30% शुल्क लगाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप और मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबॉम के बीच बातचीत के बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर इस समय विस्तार की घोषणा की गई। मेक्सिको का लगभग 85% निर्यात अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौता नियमों के अंतर्गत होता है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मेक्सिको से स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर के आयात पर 50% तथा ऑटोमोबाइल सामानों के आयात पर 25% शुल्क रहेगा, जो इस समझौते के तहत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेक्सिको अपने अनेक गैर शुल्क व्यापार व्यवधान हटाने पर सहमत हो गया है। भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को देश के स्पेस रेगुलेटर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद स्टारलिंक के लिए देश में कमर्शियल सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए अंतिम विनियामक बाधा दूर हो गई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। नई दिल्ली में मोबाइल टेलीफोनी के 30 साल पूरे होने पर आयोजित मोबाइल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत का डिजिटल सफर बेहतरीन रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में देश की डिजिटल पहुंच महानगरों से लेकर दूर दराज के गांवों तक हो गई है। इससे नागरिकों के सशक्तिकरण के साथ ही भारत सस्ती और समावेशी तकनीक में विश्व में अग्रणी बन गया है।
भारत नेट परियोजना के आधार पर आज देश के 2,14,000 ग्राम पंचायत जुड़े हुए हैं ओएफसी फाइबर के साथ, और भारत नेट द्वितीय योजना के आधार पर $17 बिलियन 1,40,000 करोड़ रुपए की योजना किसी अमेरिका और यूरोप ने नहीं सोचा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे 6,50,000 गांवों को ओएफसी ब्रॉडबैंड के साथ जोड़ने जा रहे हैं।
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि देश में अब 1,20,00,000,000 टेलीफोन कनेक्शन हैं और इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या 286% बढ़कर 97,00,000,000 हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोबाइल डेटा दरों में 96.6% की कमी के साथ भारत दुनिया का सबसे सस्ता डेटा प्रदाता बन गया है। श्री सिंधिया ने कहा कि देश के लगभग सभी जिलों में 5G नेटवर्क पहुंच चुका है और 4,74,000 5G टावर के माध्यम से 30,00,000 उपभोक्ता इसका लाभ उठा रहे हैं। श्री सिंधिया ने सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL के फिर से सशक्त होने को बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि BSNL ने 83,000 से ज्यादा 4G नेटवर्क केंद्र स्थापित किए हैं। विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार की राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा परिषद NDSC ने कल एक नई संघीय सरकार और राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
म्यांमार रेडियो और टेलीविजन के अनुसार संघीय सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री यू न्यो साओ कर रहे हैं और राज्य सुरक्षा और शांति आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन ऑंग हुआइंग हैं। NDSC ने रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ को संप्रभु शक्ति हस्तांतरित करने के आदेश को भी रद्द करने का निर्णय लिया। म्यांमार की राज्य प्रशासन परिषद के प्रवक्ता जो मिंटुन ने कहा कि NDSC ने आम चुनाव कराने के लिए आपातकाल समाप्त करने का निर्णय लिया है। फरवरी 2021 में म्यांमार के तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मियंट स्वे ने एक वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा की थी और रक्षा सेवाओं के कमांडर इन चीफ को संप्रभु शक्ति हस्तांतरित की थी। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
रूस ने कल यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमला किया। इस हमले में 16 लोगों की मृत्यु हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में बचाव कार्य जारी है। गंभीर रूप से घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यूक्रेन की राहत और बचाव सेवा ने बताया कि 1,200 से अधिक पुलिस और आपातकर्मी राहत कार्यों में जुटे हैं। रूस ने कहा है कि उसने यूक्रेन के सैन्य स्थलों और रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। उसने नागरिकों पर हमले से इनकार किया है। कीव में आज एक दिन का शोक रखा जा रहा है। बांग्लादेश का पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक देश में बच्चों और लोगों की स्थिति की कड़वी वास्तविकता उजागर करता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनिसेफ से कल जारी रिपोर्ट में विशेष तौर पर बांग्लादेश के पूर्वी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति सामने आई है। देश में 10 में से 3 बच्चे घोर गरीबी में रह रहे हैं। ये आंकड़ा वयस्कों की तुलना में काफी अधिक है। बांग्लादेश में गरीबी की चुनौतियों का बच्चों पर चिंताजनक असर पड़ रहा है। यूनिसेफ और यूरोपीय संघ के सहयोग से जारी रिपोर्ट बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अभावों को तत्काल दूर करने पर जोर देती है। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
5 मैचों की एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट टेस्ट सीरीज में लंदन के कैनिंगटन ओवल में इंग्लैंड के साथ 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन कल भारत ने 6 विकेट पर 204 रन बनाए। करुण नायर ने 52 रन बनाए। आज साई सुदर्शन अपने 38 रन और वाशिंगटन सुंदर 19 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेंगे। बात अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की। भारतीय महिला पहलवानों ने कल एथेंस में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते। महिलाओं की 43 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में भारत की रचना ने पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके तुरंत बाद भारत की ही अश्विनी बिश्नोई ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में 1 और स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम भार वर्ग में मोनी ने रजत पदक अपने नाम किया। दूसरा रजत काजल ने 73 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया। 49 किलोग्राम भार वर्ग में कोमल वर्मा ने कांस्य पदक हासिल किया। आइए चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। मकाऊ ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के टैरिफ की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा का लाइसेंस मिला। स्पेक्ट्रम आवंटन की रूपरेखा भी तैयार। म्यांमार में प्रधानमंत्री यू न्यो साओ के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की घोषणा। रूस का कीव पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला, 16 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल। और भारत ने एथेंस में अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।